वेधवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 20 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोहे सौवसाऊणं सुवर्णे उमंगलं वो भवियजनाजिनवरस्वकमकमलजुवम् जसकुलिसकलससत्य ससङ्कसङ्ककुसादिलक्षणवर्यम् यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतीश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में अभी हम संजमा संयम अभियोग द्वार देख रहे हैं और उसमें हम पृष्ठ संख्या 155 पर आ गए हैं। यहाँ ये बात पूछी थी कि भाव की बात चल रही थी ना कि देखो ये बात यहाँ से चली थी पहले तो कौन सा भाव है हाँ ये 153 पृष्ठ पर नीचे पूछा था। अल्पभूतव तो समाप्त हुआ, विशुद्धियों का अल्पभूतव बताया। विशुद्धियों के अल्पभूतव में हमने कैसे देखे थे, देखो पहले में पहले प्रतिपात स्थान प्रतिपद्यमान स्थान और अनुभय स्थान हम कहेंगे कोई अप्रतिपात और प्रतिपद्यमान कहते हैं। तो दरेक में चार चार देखे हमने। सबसे जघन्य मनुष्यों के होता है, बीच वाला सिरियन चौंक का ये जघन्य, पर मनुष्यों के तो चल ही रहे, फिर सिरियन चौंक के उत्कृष्ट, फिर मनुष्यों के उत्कृष्ट, यानी ये सभी जो भाव है वो मनुष्यों के तो सभी होते ही होते, सिरियन चौंक के केवल बीच वाली कुछ रेंज हो। ऐसे ही चार प्रतिपद्यमान में भी और ऐसे ही चार अनुभय में भी होते हैं। और प्रतिपात और प्रतिपद्यमान के बीच में अंतर है असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों का, वैसे प्रतिपद्यमान में और अनुभय में भी अंतर। ये हमने विशुद्धि के स्थान देखे थे अल्पभूतव के। अब उसके बाद पूछा गया था कि ये कौन सा भाव है, संयम संयमा संयम लब्धि संबंधी कौन सा भाव है औदयिक आदि भावों में से। चार ये नाम याद है बोलो हाँ, पारिणामिक भाव औदयिक बहुत अच्छा औक्षण तो इनमें से ये कौन सा है भाव चाव श्रमिक है, वो बात भी उन्होंने सिद्ध कर दी थी। अब यहाँ पर हम 155 पर आ गए, नया सूत्र वो नीचे जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। यानी यहाँ सिद्ध क्या कहा था, चाव श्रमिक क्यों है सिद्ध किया था। देखो नीचे जो हिंदी में सूत्र लिखा है ना उसके ऊपर दो तीन लाइन पढ़ेंगे, समाधान की तीसरी लाइन, चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय यानी उदय का अभाव होने से, उन्हीं के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से संयमा संयम लब्धि अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, इसलिए वह क्षौक्षमी का यह सिद्ध हुआ। इसकी तो विस्तार से चर्चा कल अपनी हुई, अब आगे का सूत्र पूछ रहे बता रहे हमें। जय पच्चखानावरणीय वेदेन तो शेषानी चरित्त मोहनीयानि न वेदेज्ये तदो संजमा संजम लब्धि खैया होज्ज। स्वयं आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि प्रत्याख्यानावरणीय का वेदन करता हुआ, वेदन करना यानी उसका उदय चल रहा है, चार कषाय मालूम है ना, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजम, ये चार प्रकार के कषाय, हर एक में क्रोधमान मायालोभ होते। अनंतानुबंधी किसको कहना जो सम्यक तो नहीं होने देते, या जिसके हुआ है उसका घात करके उसका उदय हो गया है, तो अप्रत्याख्यानावरण क्या है कि वो किसका प्रतिपक्षी है? थोड़ा भी त्याग नहीं होने के, यानी संयमा संयम नहीं हो सकता वो प्रत्याख्यान के उदय में। अप्रत्याख्यान की बात है, प्रत्याख्यान की नहीं। प्रत्याख्यानावरण के उदय में संयमा संयम तो होता है, परंतु सकल संयम नहीं होता, मुनि अवस्था नहीं होती। और संज्वलन उसके उदय में मुनि अवस्था तो हो सकती है, परंतु वो किसको नहीं होने देता, तो पूर्ण वितरागता नहीं होता। ये हमने उसके नाम देखे थे।
अब यहाँ जनरली तो ऐसे देखते हैं कि प्रत्याख्यानावरण संयम नहीं होने देता,
वही तो कहा।
मैं कुछ देर सोचती था,
यदि अब ये प्रश्न समझना, ये क्या पूछते हैं, यदि प्रत्याख्यानावरणीय का वेदन करता हुआ, यानी उसका उदय चल रहा है, वो कषाय चल रहे हैं, शेष चारित्र मोहनियों का वेदन न करे, तब संयमासंयम लब्धि क्षायिक हो जाए? ये प्रश्न पूछा है, उसका समाधान देखेंगे भी हम। वो देना चाहिए, नीचे जो सूत्र का अर्थ किया है ना हिंदी में, वहां भी प्रश्न चिन्ह चाहिए। हाँ, प्रश्न नहीं समझ में, बहुत अच्छा। यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है, एक्चुअली नीचे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, फिर दोबारा इस पर आएंगे। ऐसा कहने वाले आचार्य का अभिप्राय है कि, यानी प्रश्न ही समझा रहे हैं, प्रश्न का अभिप्राय क्या है उसी की बात चल रही है अपनी। पेज नंबर 155 लास्ट में, कि ऐसा कहने वाले आचार्य का अभिप्राय है कि अप्रत्याख्यानावरणी चतुष्क का तो यहाँ पर उदय नहीं है, वो तो बात सिद्ध है, वो ऐसा कहना चाहिए। तो वेदन में कौन आ रहा है? तो वेदन में आते हुए प्रत्याख्यानावरणीय भी संयमा संयम का उपघात या अनुग्रह नहीं करते, यानी प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय में संयमा संयम रोका तो नहीं जा सकता, ये उनका कहना। इसलिए यह प्रत्याख्यानावरणीय चतुष्क का वेदन करता हुआ शेष चारित्र मोहनी संबंधी, शेष यानी कौन रहेगी, संज्वलन और नवनोकष, चार संज्वलन और नौ नौ कषायों का, यदि इन्हें पॉसिबिलिटी पूछ रहे, ऐसा हो तो क्या होगा, यदि कुछ भी वेदन न करे तो, यानी किसका वेदन हो रहा है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का नहीं हो उदय, क्या ऐसा बन सकता है? नहीं होगा, जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो संज्वलन का है ही है। जो चार हमने नाम देखे थे, जहाँ हम कहते हैं अनंत अनुबंधी का उदय है, यानी चारों का है, यानी चारों प्रकार के क्रोध का या चारों मान का, चार माया, चारों उलोक का। जब सम्यक को प्राप्त होता है चौथा गुणस्थान, तो तीन का है। हम नाम लेंगे अप्रत्याख्यान का, हम कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण के उदय में ये बात हो रही है, परंतु वहाँ अन्य दो है ही है। जहाँ पांचवें गुणस्थान की बात है संयमा संयम की, प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो संज्वलन का है ही है। तो ये पूछ रहे थे यदि न हो तो, प्रश्न का अभिप्राय समझना, यदि वेदन न करे नहीं उसका उदय न हो तो संयमा संयम लब्धि क्षायिक ही हो जाए, क्षायिक भाव के समान एक विकल्प वाली ही हो जाए, क्योंकि चारित्र का प्रतिबंधन करने वाले कर्मों के यहाँ पर रहते हुए भी ऐसी अवस्था में उनका निष्कारणपना देखा जाता है, कहते परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि चार संज्वलन और नौ नौ कषायों का क्योंकि चार संज्वलन और नौ नौ कषायों का देशघाती रूप से उदय परिणाम वहां अवश्यम भावी है, होता ही है, और वो किस रूप से होता है, तो देशघाती रूप से होता है। अतएव क्षायोक्षमिक ही संयमा संयम लब्धि, संयमा संयम लब्धि के उसका अर्थ क्या कहते हैं हम, सहिमा सेम जो देश चारित्र है पांचवे गुण स्थान, तो कहते उसके कितने भेद है उसमें, असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाली। यहाँ पर जाननी चाहिए, यह सिद्ध हुआ। ये क्या बताना चाहते हैं, ख्याल में आती है कुछ बात अश्विन भाई?
डिफिकल्ट प्रश्न है,
डिफिकल्ट प्रश्न। यदि संज्वलन का उदय ही न हो
तो
संयमा संयमी में कोई भेद नहीं हो सकता, एक सिंगल भेद वाली हो जाती है। परंतु क्षमिक भाव होने के कारण संज्वलन का देशघाती रूप से उदय है, तो क्या एक ही विशुद्धि वाली होगी वो बात? देशघाती भले बने हैं परंतु उसमें कितने वेरिएशन हो गए। जिसका उदय है ऐसे संज्वलन देशघाती भी है, तो उसमें उदय में वेरिएशन यानी उसके कषाय के उदय स्थान कितने हो गए, तो असंख्यात लोक प्रमाण। ख्याल में आती बात
की खाना पेपर क्वेश्चन भी ऐसा पता है ना कि संयम देश संयम है वो किससे साहित हो सकता है, संयम साहित हो सकता है। अभी देश संयम को साहित कैसे बता सकते
हैं? साहित भाव के समान एक भेद वाली हो जाए, कहने का अभिप्राय क्या है?
अच्छा,
साहित भाव में कितने भेद होते हैं?
एक ही भेद भी है
क्योंकि वो सिंगल है ना। भेद कहाँ हो गए? क्षावक्षणिक। अब अपनी बात करते हैं, हमारा आपका सबका ज्ञान कैसा है? साइक है कि क्षावक्षणिक है? तो उसमें कितने वेरिएशन होते हैं? असंख्यात छोड़ दो, हमारे जो ख्याल में आते हैं, कोई बहुत हीन ज्ञान वाला है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, IQ अलग अलग होते हैं, देखते हैं। अभी क्षावक्षणिक ज्ञान की बात करेंगे, कोई एकेंद्रीय, कोई द्विंद्रीय, तीनीय, चतुर्थीय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी संघी असंघी है। अभी संघी पंचेंद्रिय हम जो देख रहे हैं मनुष्य उन्हीं की बात करते हैं, तो उन्हीं में बुद्धि के कितने वेरिएशन दिखाई देते हैं। अरे अपने स्वयं के ज्ञान में वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं जानते थे, अभी थोड़ा कुछ जानने लगे, ऐसा भी होता है ना। अब इतना जानते जानते कुछ हो जाए तो मेमोरी लॉस हो जाती है। तो सार्वक्षणिक भाव जहाँ है वहाँ बहुत भेद होते हैं, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये भाव कैसा है, तो सार्वक्षणिक ही है एक बात। उसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या दे, संज्वलन का उदय ही नहीं हो तो एक प्रकार का हो सकता है, तो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता है। उसका उदय भी है, वो देशघाती है, और जो देशघाती है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो गए, इसलिए यहाँ क्षावक्षणिक भाव सहिमा सहिम लब्धि है, उसमें भी बहुत वेरिएशंस हो गए। ऐसे तो हम पांचवें गुण स्थान की 11 प्रतिमा केवल बताते हैं, परंतु भेद कितने बता रहे? असंख्यात लोक प्रमाण, विशुद्धि के भेद। यहाँ यही सिद्ध करना है कि एक क्षावक्षणिक भाव है।
क्वेश्चन इसी तरह पूछा था, इसीलिए
क्वेश्चन में कंफ्यूजन, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को पहले विस्तार से समझाया। अब यहाँ पर उपसंहार करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, उपसंहार ने अभी समेट रहे, अभी विषय यहाँ समाप्त होने वाला है। एक्के नी उदिन ने न खो समलब्धि भवदी, अतः एक का भी उदय होने से क्षोक्षम लब्धि होती है, वो ध बराबर करना लब्धि। चार संज्वलन और नौ नौ कषायों में से एक भी कर्म के उदय से यह क्षावक्षमिक लब्धि ही है, तो क्या उन सबका यहाँ उदय संभव होने पर वह क्षावक्षम लब्धि क्षावक्षमिक नहीं होगी? यानी एक के भी उदय होने पर होती है तो इन सबके होने पर क्या नहीं होगी, ये पूछ रहे। संयमा संयम लब्धि निश्चय से क्षावक्षमिक ही होती है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। विशेषार्थ अभी यहाँ सब फिर दोबारा पंडित जी बोल रहे हैं। संयमा संयम लब्धि औदयिक आदि भावों में से कौन सा भाव है, ऐसी अशंका होने पर उसका समाधान करते हुए यहाँ बताया गया है कि अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, चतुष्क यानी क्रोध मान माया लोग चार है, उसको चतुष्क कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं। तो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की उदय शक्ति का यहाँ पर अत्यंत विनाश देखा जाता है। ये पांचवा गुण स्थान है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कौन से गुण स्थान में होता है नितिन भाई, आप क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण का उदय, हाँ बहुत अच्छा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अकेले चार मत कहो। हाँ अतः इसका उदय न होने से तो वह उदय है नहीं, उदय ही नहीं तो उदय कैसे कहेंगे? जिस कर्मों के उदय में जीव का अपना भाव है, किंतु जहाँ निमित्त कर्म का उदय है उसको उदय कहेंगे, तो उदय है नहीं। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का यहाँ पर उदय है, पर उदय स्वरूप वे संयम का घात करने वाली प्रकृतियां हैं। उनके उदय से संयमासयम गुण का न तो घात ही होता है और न कुछ उपकार ही होता है, यानी उसके उदय के कारण संयमासयम नहीं हो रहा है। अनुग्रह था, अनुग्रह का अर्थ होता है अनुग्रह ने फेवर, अनुग्रह करना यानी उपकार करना यानी मदद रूप होना, तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की उदय विच्छित्ति नीचे के गुण स्थानों में ही हो जाती है। मंजू बहन कहाँ होती है उदय की विच्छित्ति? दूसरे जहाँ बंद विच्छित्ति है, कषाय में जहाँ बंद विच्छित्ति है वहीं पर उदय की भी विच्छित्ति है। मिथ्या तो और चार चौकड़ी में तो ऐसा समझ सकते हैं। पेपर घोड़ा, हाँ। अतएव यहाँ पर चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, देखो हमें क्षोभशम की परिभाषा याद होनी चाहिए। याद है आपको? आपने तो सीखा है ना गुणस्थान में। हाँ मंजू बहन, क्षोभशम की परिभाषा चाहिए। आप कहेंगे आप माइक में बोल रहे थे, आपको पूछा
आपको
याद है
सर्वघाती स्पर्धकों का उदय?
वर्तमान कालीन,
हाँ वर्तमान कालीन सर्वक।
हाँ देखो, एक पहले क्या है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय।
सही सही।
दूसरी बात किसका? उन्हीं का, उन्हीं सर्वघाती का। सर्वघाती का उदय हो जावे तो क्या होगा? पूरा घात होगा। तो ना वर्तमान में वो उदय हो रहे पर भविष्य के उदीर्ण होकर उदय में आवे तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूपक्षण, यानी है वहाँ बने रहते हैं, उदय में नहीं आने को ही सदअवस्था रूपक्षण के। दो बातें हुई, यानी इसका अर्थ हुआ सर्वघाती का उदय है ही नहीं। अब तीसरी बात क्या है, उदय तो किसका चलेगा? तो देशघाती, यानी जो सर्वघाती रूप थे वर्तमान में वो देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं। तो वर्तमान देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी जहाँ अवस्था होती है उसको क्षोभशम अवस्था कहते हैं।
तो यहाँ पे ये जैसे देशयम को ये सभी भाव का देशयम असयम को कौन सा भाव कर सकते हैं? वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है
उदय?
हाँ वहाँ पे तो उदय बताते हैं हम लोग,
क्योंकि अप्रत्यक्षम का उदय है वहाँ पर।
अच्छा,
उदय भाव हो गया ना, वो उदय भाव में असंयम को लिया था कि नहीं लिया था?
हाँ लिया था ना।
हाँ चौथे तक अप्रत्याख्यान का उदय
हम लोग वहाँ पे ऐसा
कैसा करते हैं? हो ही नहीं, वो सर्वसम में खाई नहीं तो कैसे घटित करेंगे? यहाँ देखो फिर, यानी ना यहाँ अप्रत्याख्यान का उदय ना अनंत अनुबंधी का तो नीचे हो गए उदय की विक्षित। अब कहते यहाँ पर चार संज्वलन और नौ नौकाशायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, तथा उन्हीं के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से क्षौपशमिक भाव जानना चाहिए। स्पर्धक ध बराबर करना है मगर वो ठीक नहीं दिख रहा। इस प्रकार संयमासयम लब्धि नामक बारवा अर्थाधिकार समाप्त हुआ, यहाँ ये समाप्त हो जाता है संयमा संयम अधिकार। अब संयम नाम का अधिकार यहाँ शुरू हो जाएगा। अब यहाँ जो मंगलाचरण है उसको देखेंगे हम। संयम इद सयल करणे नमम सिंह सौ संज देवोक्षम संयम शुद्धि निमित्तम संयम लज्जित अनियोगम। ये तो अभी हमने शुरू किया ही है, यहाँ से भी 13वां अनुयोग द्वार जो संयम नाम का है वो शुरू हो जाता है। पहले में पहले इसका मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे नीचे हिंदी जहाँ से शुरू होता है। जिन्होंने समस्त कर्णों को संयमित कर लिया है, संयमित सयल करणे। ये सकल करण क्या होते हैं नितिन में आपको मालूम है? कौन से करण? हाँ, कौन से तीन और कौन से छह? हाँ, और नहीं, इसलिए मैंने आपको पूछू कि आपको पता है कि नहीं पता। हाँ, यहाँ तो संयमित कर लिए, और वो तो अदक करण वगैरह तो संयमित नहीं कर लिए, संयमित है वो तो नष्ट कर दिए। आप कहेंगे नहीं, या तो नष्ट या तो जो कुछ करण की बात है। हाँ, कौन से बोलो? अच्छे नहीं बोलेंगे? अरे, दस करण नाम सुना है कि नहीं? ये बंद, उदय, सत्ता, उपशम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, जो कुछ ये दस की निकासी होना चाहिए।
मैं सोच रहा था कार्य सब कार्य
करण यानी परिणाम, करण यानी इंद्रिय, उसको भी ले लो, पंच इंद्रियों के विजयी भी कह सकते हैं।
हाँ, संयम वाली बात है, उनको पूछ रहा,
क्योंकि उनको तो संयमित नहीं कर सकते दस करणों को, फिर भी यहाँ करण यानी इंद्रियों की बात है।
हाँ, कार्य जो हम लोग के
कार्य नहीं, कार्य के वो अधिकरण वगैरह कारक की बात
नहीं, वो कार्य नहीं रहता है जो परिणाम हो रहा है उसकी बात
नहीं। संयमित सहल करण है, यहाँ तो पंच इंद्रिय विजय वाले ले सकते हैं, संयत है ना, इन्हें पंच इंद्रिय विजयी हुई है, यानी वो दस करण की भी बात नहीं है यहाँ पर। करण शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ है, जैसे साधन के अर्थ में भी करण आता है, इंद्रिय के अर्थ में भी करण आता है, ये दस करण वाले भी करण होते हैं, करण लब्धि वाले भी करण होते हैं, यानी जीव के परिणामों के लिए भी करण शब्द आता है, गणित के सूत्रों को भी करण कहते हैं, ये करण सूत्र कहेंगे, जो अलग अलग जो होते हैं ना फॉर्मूले जो हम शाम को सीख रहे हो उसको भी करण कहते हैं। तो कहते हैं जिन्होंने समस्त करणों को संयमित कर लिया है ना, वो इंद्रिय विजयी है। ऐसे सर्व संयतों को नमस्कार कर, ये सर्व संयत में कितने मैक्सिमम आते हैं? तीन कम नौ करो, सुना है कभी? गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक? तीन कम नौ करोड़ में कितने गुणस्थान आ गए? छह से चौदह, एक कैसे लेंगे आप? छह से चौदह। नमस्कार कर संयम की शुद्धि के निमित्त। संयम की शुद्धि यानी क्या है? ये तो विशुद्धि की वृद्धि। संयम की शुद्धि के निमित्त संयम लब्धि अनुयोग द्वार को कहूंगा। हमें तो ऐसा लगता है करना नहीं, क्यों पढ़ना बेकार का टाइम पास, आत्मा में स्थिर हो जाओ ना। तो मुनियों को संयमियों को नहीं समझता था, वो तो कहते संयम की और शुद्धि हो गई, इसलिए संयम तो उनके तो था ही ना, तो वो शुद्धि के वृद्धि के लिए स्वयं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, मेरी परम विशुद्धि हो जाओ, ग्रंथ लिखने के काल में मेरी परम विशुद्धि हो जाओ। विशुद्धि बढ़ती है, कषायन की मंदता हो जाती है ना, उसकी बात है यहाँ पर। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। अनियोगत दारे पूर्वम गमणिज्यम सुत्तम, चारित्र लब्धि अनियोग द्वार में पहले गाथा सूत्र ज्ञातव्य है। ये गाथा सूत्र कहाँ पढ़ा था हमने? सहमा से हमने निकल, यानी ओरिजिनल सूत्र गाथा। ये किसने लिखी ओरिजिनल सूत्र गाथा नितिन भाई? हाँ, गुणधर आचार्य ने, क्योंकि ये कषाय पाहुल की गाथा है ना। पेज नंबर 106, वो गाथा हम पढ़ेंगे। देखो वहां से लद्दीय संयमा संयमस्त लद्दीतः चरितस्थ वड्ढावड्डीव सामना यतः पूर्ववदानम्। उसका अर्थ भी वहीं पर देखते नीचे। संयमा संयम की लब्धि, चारित्र था सकल संयम की लब्धि, यानी दो लब्धि की बात की। उत्तरोत्तर वृद्धि अथवा वृद्धि हानि और पूर्वबद्ध कर्मों की उपशामना प्रकृत में जानने योग्य है, यानी उनमें क्या क्या बातें होती है वो जानने योग्य है, ऐसा कहा था। उसके भी चर्चा यहाँ चले गई। अपना पेज नंबर है 157। यहाँ कहा चारित्र लब्धि अनुयोग द्वार में पहले गाथा सूत्र ज्ञात हुए है। वहां तभी बात की थी संयमा संयम और संयम के लिए एक सेम गाथा सूत्र है, उसी में दोनों का अर्थ निकलता है। उसका भी यहाँ स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। गाथा सूत्र के लद्दी तहा चरितस्य, वहां लिखा ना लद्दीय संयमा संयमस्य लद्दी तहा चरितस्य। इस अवयव रूप बीज पद में, अवयव ने पूरी गाथा नहीं, उसका एक पार्ट, कषाय प्रावृत के 15 अर्थाधिकारों के मध्य, ये 15 अलग अलग विषयों पर उन्होंने अलग अलग अधिकार चैप्टर्स लिखे हैं, उसमें से शाओक्षामिक संयम लब्धि में प्रधान रूप से प्रतिबद्ध जो 13वां अनुयोग द्वार लीन है। अभी हमारा 13वां अनुयोग द्वार चल रहा है और इसीलिए जिसकी संयम लब्धि संज्ञा है उसे इस समय बतलाते हैं, यानी अभी इस अनुयोग द्वार में संयम लब्धि की चर्चा चलेगी। उसमें सर्वप्रथम गाथा सूत्र गमणिज्जम यानी जानने योग्य है, क्योंकि सूत्र के बिना उसकी प्ररूपणा करने पर सूत्रानुसारी शिष्यों की उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्या कहना चाहते हैं? ये जो मूल बात आगम की जो है धारा जो सर्वज्ञ भगवान से परंपरा से चली आ रही है वही सत्य है, और सूत्रानुसारी शिष्य ने सूत्र के अनुसार समझने वाले जानने वाले, यानी उसे व्हाट इज द प्रूफ पूछेंगे ना, तो मूल सूत्र उनको बताना चाहिए कि मूल सूत्र में बात आई है कि आप अपने मन से कह रहे हो। उसके लिए बात कहते हैं कि सूत्रानुसारी शिष्यों की अन्यथा उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, यानी उस पर उनका विश्वास नहीं होगा, उसको वो समझेंगे नहीं। परंतु यहाँ पर वह कौन सा सूत्र उपयोगी है ऐसी आशंका होने पर पृच्छा वाक्य को कहते हैं। समझा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, मैंने यहाँ क्या पूछा है वो गाथा कौन सी है, तो कहते जाचे व संजमा संजमे बनी दागाहा साचे व एत्थ भी काय हुआ। जो गाथा संयमा संयम अनुयोग द्वार में कही गई है वही यहाँ पर प्ररूपण करने योग्य है, जो हमने अभी अभी देखी है।
जो जीव जिज्ञासु से अंतर्मुख में संदेह को प्राप्त करके अंतर्मुख में मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है, उनकी क्या ये सब लब्धि ख्याल में आती होगी क्योंकि इसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, ये कितना मेरा परिणाम शुद्ध होता जाता है।
आप तो पूछते कि उसके अंतर्मुहूर्त में जाने वाले को ख्याल में आती है क्या?
हाँ।
अरे पूर्व कोटि में जाने वाले की भी ख्याल में नहीं आएगी, वो हर समय थोड़ी लब्धि की उसकी कितनी विशुद्धि बढ़ी है, थर्मामीटर देखते थोड़ी
नहीं, थर्मामीटर नहीं पर अंतरण परिणाम से इसे
बस मन में विशुद्धि हो रही है। आपको क्रोध आता है तो बहुत आया कि थोड़ा आया, समझता है कि नहीं? उस समय कोई पूछेगा अशन भाई कितने परसेंट क्रोध है, तो उसे अब पूछने वाले पर ज्यादा क्रोध करोगे, तो क्या मुनि के जब वो फिरता है
Thank you. नहीं, क्या सोच रहा था, क्या हम लोग ये पढ़ ले तो इसमें अटक कहाँ पे अटक जाते हैं, ऐसे नहीं
अटक होने
होगा।
की बात नहीं,
नहीं
ये तो ज्ञान का विषय है।
नहीं
नहीं उसके ऐसे स्थूल पद्धति से तो ख्याल में आ जाएगा। जैसे आप अपने परिणामों की बात करो, जब स्वाध्याय नहीं थे पहले में, पहले बस कुछ नहीं था, तो जो आपके परिणाम थे, जो आपके अन्य विषयों के प्रति रुचि थी, अभी उस रुचि की बात करो तो क्या उतनी गहरी रुचि उसमें रही है?
हाँ, फर्क पड़ा है।
जैसे हम सोशल विजिट करें, गप्पे लगाते बैठे या कुछ अन्य अन्य चीजें करें, क्या ऐसी भी रुचि अभी भी रही है, क्या अभी इसकी रुचि बढ़ी है?
नहीं, यहाँ पे ज्यादा हाँ
है ना, और अन्य विषयों के प्रति तो बिल्कुल उदासीनता हो जाती है, तो वो ख्याल में तो आ रही है कि नहीं आ रही? ये स्वयं कह रहे हैं ना कि ये कहूंगा तो मेरी विशुद्धि बढ़ जाए, तो वो भी बात उनकी मंदता, स्वयं की मंदता कहो या अंतरंग शांति की वृद्धि, वितरागी शांति की वृद्धि होती है ना वहाँ पर, वो जरूर ख्याल में आई, परंतु कितने परसेंट अनंत भाग वृद्धि हुई क्या?
नहीं भाषित होता है कि नहीं, इसका मेरा दोष सिद्धा
श्रेणी की बात कहाँ पूछ रहे हैं?
नहीं, सभी जगह इतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है।
हाँ।
और वो श्रेणी में भी 11 गुण स्थान में जाके नीचे
वो तो विषय किसको किया आपने? आत्मा, आत्मा को विषय कर दिया है इसने। ऐसे अन्य चीजों का भी ज्ञान है वहाँ पर, किसी चीज को जान रहे हैं, परंतु जान रहे हैं उसमें राग की मंदता हो रही है कि नहीं वहाँ पर? और वहाँ का राग है वो अबुद्धिपूर्वक में है, फिर भी शांति का वेदन होगा कि नहीं होगा?
आनंद की अनुभूति
बिल्कुल है। अभी बढ़े आगे, यहाँ जो हम इतने डिटेल्स जान रहे हैं ये आगम से जानने का विषय है। हाँ, आनंद की वृद्धि है, शांति है, इसका परिणाम है। और जो कुछ जान रहे हैं बिल्कुल, यानी अभी हम कुछ चीज जानते हैं तो ये ऐसा कलर क्यों लिया, वैसा क्यों नहीं लिया, ये उसके साथ हमारा केवल मात्र ज्ञान नहीं चलता, उसके साथ राग भी काम करता है। और वो तो जानने का उनका सब गेय है उनके लिए। राग रहित किसी चीज को जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, उनको पढ़ के जानने से वो राग उत्पन्न नहीं हो रहा है। इतनी मामूलियों की बात करेंगे तो है, परंतु वो नहीं के बराबर है। और हमारा कैसा?
हमारा तो राग पूर्वक ज्ञान होता है।
राग पूर्वक मत तो जैसे दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, मैं तो जानने के पहले राग हो ऐसा होगा। आप कुछ भी डेफिनेशन बनाने जाते हैं?
नहीं, बनाने नहीं, पहले राग आता है।
नहीं नहीं, पहले राग नहीं आता है।
आपका ज्ञान इतना परावलंबी नहीं है कि
ज्ञान ज्ञान के कारण हो रहा है, राग राग के कारण, ऐसे टाइम दोनों होते हैं और उसमें भिन्नता ख्याल में नहीं आ रही। ज्ञान और राग को दोनों ही मेरा स्वरूप है मान लेते अपने, मैं जब हम मैं कहते हो तो उसमें क्या क्या है? आप में, आप में क्या क्या है बोलो? जब हमने मैं मान लिया है, टोडर मंजी ने बताया मुख्य मार्ग प्रकार, एक तो आत्मा है और एक पर है। अभी यहाँ पर क्या है, मनुष्य जो हम कहेंगे तो एक है जीव आत्मा, वहाँ कर्म भी है, उसका भी उदय वगैरह कार्य चल रहा है, और शरीर की रचना संयोग वो भी है। अज्ञानी क्या मान रहा है? ये सब मिलकर मैं हूँ मानता है। अपने में क्या लिया? ज्ञान आदि भी लिया, अपने में क्रोधादि भी लिया जो कि कर्मों के उदय में हो रहे हैं। तो ज्ञान भी मैं हूँ, विभाव रूप वो भी मैं हूँ, ये कर्म वगैरह का ये शरीर की रचना हुई वो भी मैं हूँ, ये संयोग भी मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, ये सारे पदार्थों में मैं पने की बुद्धि वो अज्ञानी है। अब ज्ञानी ने क्या किया, इन सबको बाहर निकाल दिया, क्या किया? जाना,
पृथक को जाना,
जाना
स्वरूप है वो,
राग भी है ज्ञान भी है, पर राग को विभाव है, मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा समझ लिया उसने। ये कर्मादि है वो तो है, शरीर आदि की रचना है वो तो परद्रव्य पुद्गल है, अत्यंत भिन्न पदार्थ वो भी मेरे से भिन्न ही है, ये सब भिन्न है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं भी पर्याय जितना नहीं है, मैं तो त्रिकाली हूँ, ये उसने जान लिया। उसके भी संयोग में जो कुछ है वो भी है, उसने भिन्न तो करने का सवाल ही नहीं है, जो भिन्न ही है उसको भिन्न क्या करेगा है? चलो आगे बढ़ेंगे
ना, हाँ। क्या पूछा है?
आपने जो राग पूर्वक कहा ना उसके लिए मैंने कहा है।
नहीं हम वो तो अभी तो मेरा निराकरण हो गया है।
समय साल में
नहीं,
परसों ये शनिवार नाटक समय साल में
नहीं, मेरे ख्याल से ये फ्राइडे को आया था, फ्राइडे को मैं निकल गया। हाँ
राग को कृत्रिम कहा है, और आप कौन हो, कृत्रिम हो क्या अकृत्रिम हो? चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये गाथा का अर्थ दोबारा देखते हैं। जो गाथा संयमा संयम अनुयोग द्वार में कही गई है, जो अभी हमने 106 पेज पर देखी, वही यहाँ पर प्ररूपण करने योग्य है, यानी बताना चाहिए वो भी। पहले संयमा संयम की प्ररूपणा के समय लद्दी च संयमा संयमस्य लद्दी तः चरितस्य इत्यादि जो गाथा कह आए है, वो उन्होंने पहली लाइन लिखी यहाँ, इसलिए इत्यादि शब्द डाला। उसी की यहाँ भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि वह इन दोनों ही अर्थाधिकारों में प्रतिबद्ध है। उस एक ही गाथा के ये दोनों अधिकार अलग अलग निकले हैं। अब इस गाथा सूत्र का अवलंबन लेकर प्रकृत अनुयोग द्वार का कथन करते हुए, वहाँ सर्वप्रथम अध प्रवृत्तकरण में चार प्रस्थापना गाथाओं का विशेष व्याख्यान करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। आगे चरिम समय अधा पवत्त करणे चत्तारी गाहाओ, अधा प्रवृत्त करण के अंतिम समय में चार सूत्र गाथाएं व्याख्यान करने योग्य है। क्योंकि ये चार सूत्र गाथाएं क्या है, जैसे औपशमिक सम्यक्तों में भी चार प्रश्न वो ऐसे सूत्र गाथाएं पूछी गई थी, औपशमिक सम्यक्तों गए 12वीं पुस्तक में भी पूछा था अधा प्रवृत्तकरण के अंत समय में क्या क्या होता है, यहाँ भी बताएंगे किसकी किसकी चर्चा करनी है उसकी बात बताएंगे यहाँ पर। देखो के हाँ पढ़ेंगे हम, अधा प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में चार सूत्र गाथाएं, यहाँ पर दो करण होते हैं। अभी यहाँ पर करण की बात आ गई, तो कोई ऐसा अन्य है कि जो तीन करण भी होते हैं, या एक करण भी होता है, या बिना करण भी होता है, या बात किसकी चल रही है? संयम प्राप्ति की। जब किसी जीव को संयम की प्राप्ति होती तो पहले में पहले सातवां गुणस्थान प्राप्त होगा, या तो पहले से सातवें में जाएगा या चौथे से जाएगा सातवें में, या पांचवें से जाएगा। तीसरे से जाने वाला होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तीसरे से रास्ते कितने हैं, कहाँ जाता है तीसरे से? हाँ चौथे में या पहले? दूसरे से कोई ऊपर चढ़ेगा?
नहीं
चढ़ेगा, यानी पहले से जाएगा या चौथे से या पांचवें। कंडीशन क्या आवश्यक है? पहले में पहले मुनि दीक्षा लेनी होनी चाहिए, बाह्य की बात द्रव्यलिंग, हाँ चरणानुयोग के अनुसार सब हो जाए। अब वहाँ जो प्रथमोक्षम सम्यक्त के साथ जो मिथ्या दृष्टि है तो वो उपशम योग्य काल उसका चल रहा होगा, या अनादि मिथ्या दृष्टि है वो पहले से डायरेक्ट सातवें में जा सकता है। उसके तीन करण होते हैं, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण होते हैं। किसके जो उपशम सम्यक्त के साथ संयम प्राप्त करेगा उसके तीन करण होते हैं। अब कोई जो सादी मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि ने उसके सत्ता में दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियां पड़ी हुई है और उसका वेदक योग्य काल चल रहा है, यानी उसकी उद्वेलना होते होते अभी कुछ स्थिति बाकी है एक सागर जितनी, अब वो वेदक समय तो प्राप्त करेगा उस काल में, तो उसके दो करण होते हैं, स्टार्टिंग वाले दो, एंड वाले दो नहीं, अधकरण और अपूर्व करण। तो उसकी बात यहाँ बताएंगे, क्योंकि जो औक्षमिक सम्यक सहित तीन करण करता है उसकी चर्चा दर्शन मोह की उपशमना में हमने देख ली 12वीं पुस्तक में। तो यहाँ कहते यहाँ पर दो करण होते हैं,
यहाँ पे जो छठा सुसाता गुण स्थान में जो चलता रहता है उनका जो सातवें से छठे में, छठे में सातवें में, अच्छा वहाँ पे कोई करण परिणाम नहीं होता,
वहाँ कोई करण की बात नहीं है उनका अंतर्मुख। आपका प्रश्न ऐसा है, जो छठे से सातवें में जाता है क्या वे करण परिणाम से जाते हैं? तो नहीं, वो तो उनका तो रूटीन है ना, अंतर्मुख अंतर्मुख छठे से सातवें, सातवें से छठे चलता है। वहाँ तो और भी है कि जो बिल्कुल एक लघु अंतर्मुख के लिए पहले में जाएंगे वापस सातवें में आता है, तो बिना करण के भी आता है। उसके लिए बताया कि उन्होंने अधिक बंद नहीं किया था, ऐसी ऐसी कंडीशन उसमें है। यहाँ की बात अभी चलेगी, यहाँ जिसकी चर्चा चलेगी तो कहते हैं यहाँ पर दो करण होते हैं। नितिन भाई कौन से दो करण? हाँ, उनमें से अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में पहले चार सूत्र गाथाएं व्याख्यान करने योग्य, यानी चार बातों की यहाँ विशेष प्ररूपणा करनी चाहिए, अन्यथा प्रकृत अर्थ विषय, प्रकृत यानी सांप्रत विद्यमान वर्तमान में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रकृत अर्थ विषय यानी हमारा जो विषय यहाँ चल रहा है उसका विशेष निर्णय नहीं बन सकता, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कहीं भी जो चर्चा आती है तो उस विषय का हमें विशेष निर्णय करना योग्य है। तम जहां वे जैसे, वे गाथाएं कौन सी है यही सूत्र द्वारा पूछा गया है। तो वहां ऊपर बताते हैं, संयमम परिवज्यमानस्य परिणामो केरिसो भवे, काणि वा पूवबद्धानि पूवद्धानि है। बद्धानि चाहिए, के अंशे जीयते पूवम किम थिदियानि कम्मानि, उसमें भी बताई होगी ना आप, संयमा संयम में भी।
वहाँ तो दिखते भी बता दी थी ना पहले से,
क्योंकि वहाँ भी ऐसी बात वो जाननी चाहिए ऐसा कुछ लिखा 112 पर है। उपसामनायतः पूर्वबद्धानम्, नहीं नहीं मैं जो बताना चाहती हूँ ना,
ये 114 पुष्प पे नीचे है,
ये पूछा नहीं है फिर भी ये क्या क्या होता है उसकी बात डायरेक्ट उन्होंने बता दिया।
114 पे जो नीचे बताई वो है
115 पर सूत्र का ही डायरेक्ट उन्होंने, मैं जो पूछना चाहती हूँ हम लास्ट में देखेंगे 159 पेज का यह सूत्र का था, 159 पेज 342 पानीवा पूर्व बद्धानी 342 पुष्पर सेकंड लाइन। पूर्व बद्धानी ब चाहिए वहां पर, हाँ बद्धानी पूर्व बद्धानी। यानी उसके परिणाम कैसे होते हैं, जैसे विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है और पूर्वबद्ध कर्मों का क्या होता है तो उसमें सत्ता घटती है वगैरह वगैरह, उसकी बात। जो नया बंध कैसा होता है, ऑलरेडी बंधे हुए का क्या होता है, के हमसे जीयदे पूवम, किस अंश में वो खिरते हैं, यानी वो कितनी वो गुण श्रेणी रचना वगैरह होती है, उदय किस रूप से होते हैं, प्रदेश वगैरह किम थी, यानी कम मानी स्थिति कितनी होती है, इसकी चर्चा यहाँ चलेगी। अब उसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि के या वेदक सम्यक दृष्टि के, दो बातें क्या आई, संयम कौन प्राप्त कर सकता है, वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि, ये तो हमने बात चर्चा की थी, फिर भी मैं फिर दोबारा बताऊंगी, अपने नई मेहमान है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्या तो कर्म है दर्शन होने का, जब वो पहले औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करता है तो दर्शन होने की मिथ्या तो में से और दो प्रकृति तैयार होती है, कौन सी दो, और दो मिथ्या तो है ही है, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। अब ये जब तक सम्यक दृष्टि है, वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे, तो सम्यक प्रकृति का उदय है, ये दो एक समय पहले ऊपर पड़े हैं और उदय में आते आते इस रूप होकर उदय में आते हैं। अब ये जो मिथ्यात्व में गया तो क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व का उदय होगा, ये दो ऊपर पड़े रहते। अब मिथ्या दृष्टि हो गया तो अभी तो मिथ्यात्व का नया बंध भी करेगा, इन दोनों का क्या होगा, तो ये दो उदय के समय तो टर्न होते ही होते हैं, अधिक मात्रा में भी टर्न होते हैं, उसको उद्वेलना कहते हैं, तो इनकी स्थिति घटती चली जाती है, मिथ्या तो नया नया बंध रहा है, तो इनकी स्थिति घटते घटते कितनी हो गई,
पृथक सागर, एक सागर,
एक सागर के करीबन हो गए,
एक सागर।
ऐसी अवस्था में इन तीनों का फिर दोबारा उपशम कर सकता है, अभी उसकी कंडीशन डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काल है, इतनी कम स्थिति करने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग जितना काल लगता है, असंख्यात वर्ष लगता है, उतने काल में यदि जीव को सम्यक तो होगा, तो कौन सा होगा, तो कहते हैं वेदक सम्यक। तो इस काल जो है पल्ले का असंख्यात भाग, सम्यक तो छूट कर मिथ्या दृष्टि हुआ है, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक उसको वेदक प्रायोग्य कहेंगे, वेदक होने योग्य, यानी उसको सम्यक तो प्राप्त होगा, तो इतने काल में होगा तो वेदक सम्यक तो ही होगा, जिसको हम सौक्षम सम्यक तो कहते हैं, औषमिक सम्यक तो उस काल में नहीं होगा। जब इन दोनों की स्थिति इतनी कम कर दी, या ऐसा भी हो सकता है और भी कम होकर, और भी कम होकर ये तो मिटी गई, एक मिथ्या तो ही रह गया, तो अनादि मिथ्या दृष्टि की जैसा हो गया, तो भी उसको अभी कौन सा सम्यक होगा, औषमिक, औषमिक उसको वेदक कैसे होगा, उसके अन्य दो प्रकृतियां है ही नहीं, तो ये होगा वेदक प्रायोग्य। दूसरी बात, या वेदक सम्यक दृष्टि, जो वेदक सम्यक दृष्टि है ऑलरेडी, जिसको संयम प्राप्त होने वाला है, उसका गुणस्थान कौन सा हो सकता है, जो चौथे, क्योंकि चौथे या पांचवे में से वो संयम प्राप्त करेगा, तो इसका अर्थ ख्याल में है ना, वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि के या वेदक सम्यक दृष्टि के संयम को प्राप्त होते समय परिणाम कैसा होता है। अभी संयम को प्राप्त हुआ नहीं है, उसके अंतर्मूल पहले की बात चल रही है, किस योग, यानी उसका योग कौन सा होता है, योग कौन सा होता है, यानी मनोयोग होता है कि वचन योग होता है कि काय योग होता है, तो कहते कषाय कौन सा होता है, क्रोध मान माया लोभ कौन सा कषाय होगा, और उपयोग में कौन से उपयोग में विद्यमान, दर्शनोपयोग में होगा क्या, ज्ञानोपयोग में, उसके कौन सी लेशा और वेद होता है, लेशा कौन सी होती है, क्या अशुभ लेशा में वो संयम को प्राप्त करेगा, शुभ लेशा में करेगा, तो कौन सी होगी, इसकी बात अभी पूछ रहे, या कौन सा वेद होता है, कौन से वेद के उदय में, यानी किस जीव को ये संयम प्राप्त हो सकता है, बाह्य से तो पुरुष ही होना चाहिए, द्रव्य वेद और भाव वेद तो तीनों में से कोई भी हो तो भी चले, इसका तो उत्तर वो देने वाले, यहाँ तो केवल प्रश्न पूछा है कि इसको जानना योग्य है, ये तो एक हो गए। अब दूसरी बात कौन सी, कहानी वहां पूर्व बद्धानी, पूर्वबद्ध कर्म कौन कौन है, वर्तमान में किन किन कर्मों को बांधता है। पूर्वबद्ध कर्म कौन कौन है का अर्थ है कौन कौन से हो तो संयम नहीं हो सकता, ये पूछ। तो आप ऐसा कोई एकाध कर्म बता सकते कि जिसकी सत्ता में वो कर्म है वो तो मुनि नहीं हो सकता? हम सोचे ना जरा, उन्होंने वो तो बाद में बताएंगे। ऐसे किस कर्म की सत्ता होगी तो वो जीव मुनि नहीं हो सकता? सत्ता की बात है, उदय की नहीं, सत्ता की बात
नहीं। नहीं मैं बताऊं,
इनको जरा सोचने दो ना। बोलो नितिन भाई, बोलो मंजू भाई, सत्ता की पूछ रहे
नरकायु।
हाँ बोलो बोलो,
नरकायु।
हाँ नरकायु कह रहे हैं आप, नरकायु का जिसने नरकायु बांधी हो, आप कोई दूसरा बताएंगे? तिरियन चाहिए, देवायु वाला तो संयम प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा ना,
उदय नहीं, उदय की बात नहीं चल रही, सत्ता की बात चल रही। देवायु बांधी है वही संयम प्राप्त कर सकता है, या जिसको अवधायु वो भी संयम प्राप्त कर सकता है, पर जिसने नरकायु बांधी है, जिसने तिरियंचायु बांधी है, जिसने मनुष्यायु भी बांधी है, तो वो तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त करेगा। संयम असंयम की बात तो दूर रहे, यहाँ तो बताया नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर हमें जितने मालूम है उतनी उसकी तो बात करेंगे ना। तो कहते पूर्वबद्ध कर्म कौन कौन है, यानी कौन कौन नहीं है उसकी हमने चर्चा की, कौन कौन है उसमें समझ लेंगे। वर्तमान में किन किन कर्मों को बांधता है, अभी वर्तमान में यानी किस समय की बात चल रही है?
ये
वो अंतर्मुख अभी संयम प्राप्त कर रहा है उस समय की बात है। कितने कर्म उदयावली में प्रवेश करते हैं, यानी उदयावली में प्रवेश करते हैं वो अभी कौन से उदय रूप है, कौन से अनुदय रूप है, और उदयावली में किस चीज का प्रवेश है, और यह किन कर्मों का प्रवेशक होता है। प्रवेशक होता है करते समझते नहीं समझते? एक होता है उदीर्णारूप होकर उदय आना, और दूसरा उदयावली में तो आ रहा है परंतु उसका उदय नहीं है, ऐसे दोनों ही हो सकते हैं। जैसे ये अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, उदयावली में पड़े हैं
पर उदय नहीं।
एक एक निषय नीचे भी आएगा, वर्तमान में उदय में आते हुए वो संगलन रूप से हो जाएगा है? तो यहाँ तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है तब की बात है, तब ये चौथे से आता है क्या पहले से आता है क्या पांचवे से आता है उस पर निर्भर है। तो हम कहेंगे उन उन कर्मों को बांधता है या वो उदयावली में है, जो कुछ है उसकी चर्चा तो अभी करने वाले हैं, अभी तो हम केवल सोच सकते क्या क्या हो सकता है। हाँ ये हो गई बात। पूर्व ही बंदर उदय रूप से कौन से कर्मांश क्षीण होते हैं, यानी कौन से कर्म वहाँ है ही नहीं है, किस रूप से बंदर उदय रूप से, सत्ता रूप से नहीं कहा, यानी कौन से कर्मों का बंद वहाँ ऑलरेडी रुक गया है और किस कर्मों का उदय रुक गया है, ये भी बात बताइए। आगे चलकर यह जीव किस कर्म का न तो अंतर करता है और न किसी कर्म का उपशामक होता है, ये वेदक समय तो प्राप्त करने वाला है ना, इसलिए संयम प्राप्त करते समय ना इसका अंतर होता है ना उपशमन होता है।
आगे चलकर मीन्स ये काल में,
इस काल में, ये अपूर्वकरण के अंत समय की बात है, अधा प्रवृत्तम के अंतिम समय की बात है। तो आगे चलकर अधा प्रवृत्त में उसका अंतर नहीं होगा। वह किस स्थिति वाले कर्मों का तथा किन अनुभागों में स्थित कर्मों का अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थान को प्राप्त होता है, इसकी तो चर्चा सब आ जाएगी, यानी वो अनुभाग कांडक घात वगैरह करता है, कितना करता है, क्या शेष रहता है, उसकी चर्चा हो जाएगी। हाँ सब में क्वेश्चन चाहिए था वैसे, यानी हर एक गाथा में जो है ना,
ये पद्य के पहले हम लोग कुछ सोच लेते देखते क्या हम लोग को मालूम है
क्या
ये सब कुछ
अभी तो पता है ना
नहीं, कौन सा कौन का किन किन कर्मों को बांधता है, किन कर्म उदयावली में होते,
अभी जो कर्म नहीं बांधते जैसे जो संयम प्राप्त कर रहा है
हाँ।
तो असाता वेद नहीं बांधे करके साता वेद
साता वेद बांधेगा, आचार्य बांधेगा,
तो उच्च गोत्र बांध रहा है, यानी जो जो कर्मों की बंध स्थिति ऑलरेडी हो गई है वो तो नहीं बंधेगा, और यहाँ विशुद्धि के काल में विशिष्ट कर्म नहीं बंधेगी, जो बाद में भी बन सकते वो यहाँ पर नहीं बंधेगा।
यहाँ पे तीन शुभ लेशिया ही होगी ना,
आयु का बंधन नहीं होगा वगैरह वगैरह हाँ। बातें सब यहाँ ले लेना। उन्होंने क्या दो चरण है तो दो में मिलकर एक क्वेश्चन मार्क दिया है, नीचे के दो में मिलकर एक क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इन गाथाओं की यहाँ पर विभाषा करने पर, विभाषा ने हमने देखा उसका अर्थ जो बताया है उसका अर्थ करना उसको विभाषा, और परिभाषा किसको कहता है, यानी जो बताया है जो नहीं भी बताया है जो उद्देश्य चला रहा है वो सब बताना उसको परिभाषा का सूत्र के संबंध में, नहीं तो पूरी दुनिया की बात नहीं, हाँ चुली का नहीं है वो। इन गाथाओं की यहाँ पर विभाषा करने पर उपशम सम्यक्त्व के साथ संयम को प्राप्त होने वाले, उपशम सम्यक्त्व के साथ होने वाला चौथे से जाएगा कि पांचवे से जाएगा नितिन भाई? उपशम सम्यक्त्व के साथ जो संयम को प्राप्त होता है वो तो चौथे गुणस्थान में से सातवें में जाएगा कि पांचवे में से जाएगा? क्या हाँ फर्स्ट में से जाए, बहुत अच्छा। उपशम सम्यक्त्व के लिए कंडीशन ही है कि वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, अच्छा ग्रहण करते हैं अच्छा है ये, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सोचना चाहिए। बहुत अच्छा, नहीं आप लोगों का तो अभ्यास हुआ ही है परंतु ये तो अभी भी आने लगी ना, तो फर्स्ट में से ही जाएगा बरोबर है। यहाँ क्या लिखा, उपशम सम्यक्त्व के साथ संयम को प्राप्त होने वाले, आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है नितिन भाई, मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व की उत्पत्ति अनुयोग द्वार में, सम्यक्त्व की उत्पत्ति अनुयोग द्वार यानी मिथ्या दृष्टि को जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती उसका अनुयोग द्वार कहाँ देखा था, बारहवीं पुस्तक में अंत में, जिसको हमने कहा दर्शनों की उपशम नाम, इनकी जैसी विभाषा कर आए हैं उसी प्रकार पूरी यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है। ख्याल में आई बात, दर्शन मुख की उपशमना में क्या क्या कहा था, वहाँ तो कहा था चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि प्राप्त करेंगे, तो यहाँ तो संयम को प्राप्त करने वाले कौन हो गए, मनुष्य ही हो गए। तो विशेषता ने डिफरेंस बता रहे, विशेषता है कि यहाँ पर मनुष्य संबंधी ही बंध उदय और उदीर्णा रूप प्रकृतियों का अनुगम करना चाहिए, मैंने उनके बंधने वाले प्रकृतियों में भी कौन सी बंधेगी कौन सी नहीं बंधेगी उसकी बंधापसर ये कहाँ लगता है, प्रायोगिक लब्धि के काल में स्थिति बंध तो घटता जाता है, स्थिति बंधापसरण और प्रकृतियों के बंध भी घटते जाते हैं, जिसको हम प्रकृति बंधापसरण कहते हैं, उसके चौथी स्थान है। तब ये तीन करण लब्धि शुरू होने से पूर्व की बात है, तब क्या होता है क्रम से एक एक बंधना रुक जाती है, जैसे नरकायु का बंध नहीं होता, तिरंचायु का नहीं होगा, फिर कुछ काल के बाद जाके मनुष्यायु का भी नहीं होगा, देवायु का भी नहीं होगा, फिर नरगति नरगत्यानुपूर्वी का नहीं होगा, फिर वो लंबी चौड़ी लिस्ट जो एक इंद्रिय आदि संबंधी, तो मनुष्य तो सभी कर्म बांधते तो उनकी बंध विच्छित्ति भी कहेंगे, जो देव सम्यक तो प्राप्त करते चौथे गुणस्थान के साथ
मनुष्य,
तो वो जो प्रकृतियां बांधते ही नहीं उसकी वहां चर्चा नहीं होगी, तो उनके लिए कहेंगे मनुष्यायु नहीं बांधते, तिरंचायु नहीं बांधते, वो देवायु बांध ही नहीं रहे, वो नरकायु बांध ही नहीं रहे, तो ये मनुष्य के योग्य जितनी बनती थी उसमें कितने का बंध रुक गया उसकी बात है। अब आगे बढ़ेंगे, कहते मनुष्य संबंधी ही बंध उदय और उदीर्णा रूप प्रकृतियों का अनुगम करना चाहिए, यानी उसी की चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उससे अन्यत्र संयम की उत्पत्ति संभव नहीं, अन्यत्र ने कहा अन्य तीन गतियों में, अन्य जो भी विशेष है उसका जानकर कथन करना चाहिए, अन्य जो कुछ विशेषता है उसका अर्थ क्या है, जब कोई जीव पहले गुणस्थान से चौथे में जाता है, प्रथमोत्तम की बात चली सभी में, या कोई पहले से पांचवे में जाता है, कोई पहले से सातवें में जाता है, तो पहले से चौथे में जाने वाले की विशुद्धि कम है, उससे पांचवें में जाने वाले की ज़्यादा है, उससे डायरेक्ट सातवें में जाने वाले की बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो स्थिति कांडक घात होते हैं वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, स्थितिबंध और घटता चला हो चल जाएगा, यानी उसमें ये विशेषताएं होगी, उनमें डिफरेंस होगा, और वो स्टार्टिंग से ही होगा। ऐसा नहीं कि समय को प्राप्त किया फिर चौथे पांचवे को छठे टच करते करते सातवें में जाए, ऐसा नहीं होता। बाद में कोई विशेषता नहीं होती। जब हम कहेंगे पहले से चौथे में जाने वाले के दर्शन मुनि की बात, तो सबके लिए समान है। दर्शन मुनि में जो अंतर पड़ता है, उपशम होता है, वो तो सबके लिए समान है। उन चौथे में जाने वाले के मात्र अनंतानुबंधी जो उदय रूप था, वो वर्तमान का अप्रत्याख्यानवरण होकर उदय में आएगा। जो पांचवें में जाने वाले के दो कषाय का अनुदय रहेगा, अन्य दो रूप से उदय भी आएगा। डायरेक्ट सातवें में जाने वाले के तीन का अनुदय होगा और संजलन रूप से उदय होगा। ये डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। यहाँ उसकी चर्चा नहीं करने वाले, ये तो केवल बता दिया कि उसमें कुछ विशेषता है जो जानकर कथन करना था। इसलिए संयम को प्राप्त होने वाले, अभी कंडीशन कौन सी डाली, वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि के जो ऊपर कहा था उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और वेदक सम्यक दृष्टि के चौथे पांचवें गुण स्थान वाले के प्रकृत गाथाओं के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने पर, यानी किसके संबंध में बात चलेगी, वेदक सम्यक्तों के साथ जो संयम प्राप्त करने वाला है उसी जीव की यहाँ बात चलेगी, और उस संबंधी विशेष व्याख्यान करने पर जो कुछ विशेष है उसका अनुगम करेंगे, यानी उसकी बात यहाँ भी चलेगी, उसकी चर्चा चलेगी। यथा सर्वप्रथम वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि के प्रथम गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने पर, क्या पूछा था पहले में कि उसका परिणाम कैसा होता है, कौन सा योग कषाय उपयोग वगैरह वगैरह पूछा था ना, तो ये कौन पहले में पहले किसकी बात करेंगे, मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व से सातवें में जाने वाला है उसकी बात। तो कहते उसकी विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन मोह के उपशामक के समान ही व्याख्यान करना चाहिए, इतनी विशेषता है। अब यहाँ क्या विशेषता है कि जोगेति इस पद का विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन मोह क्षपणा के समान व्याख्यान करना चाहिए। अब इसका यहाँ बताएंगे विशेषता। जो वेदक प्रायोग्य मिथ्या दृष्टि जीव संयम को प्राप्त करता है उसका परिणाम विशुद्धतर होता है, यानी अधिक अधिक विशुद्ध होता चला जाता है। औदारिक कायो, वैसे तो हमने जब सम्यक को प्राप्त करने वाले के तो चौथे में जाने वाले को तो कोई भी कायोग हो सकता है ना, वैकिरिक भी हो सकता है। यहाँ कहते हैं औदारिक कायोग, चार मनोयोग, मनोयोग में भी कौन सा भी चलेगा, और चार वचन योग, इनमें से कोई एक योग होता है। चारों कषाय में से हीयमान कोई एक कषाय होती है। हीयमान का अर्थ क्या होता है, घटते जा रही है, क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है ना, तो कोई भी कषाय क्रोध मान माया लोभ, क्योंकि किसी ना किसी का कषाय का उदय तो होगा ही होगा। आगे कहते हैं साकार उपयोग होता है। साकार उपयोग का अर्थ मालूम है, नहीं मालूम नितिन भाई, ये बहुत चर्चा बहुत बार चली साकार उपयोग की, ज्ञान उपयोग। साकार यानी वो विशेषताओं से ही जानता है ना ज्ञानी, की उसको साकार कहते हैं। आकार यानी क्या, हमने क्लिप को जाना, तो ज्ञान ये क्लिपाकार हुआ, यानी ज्ञान में आकार हो गया, ज्ञान पूरा उस आकार रूप हुआ, ऐसा नहीं है। आकार रूप होना यानी उसकी विशेषताओं को जानना, जैसे ज्ञान ने जाना इसका कलर क्या है, इसका आकार है, इसका शेप क्या है जाना, वो हल्का है क्या भारी है वो जाना, उस संबंधी सभी विशेषताओं को जाना, इसी को कहते साकार। जैसे सुगंध को जाना, तुम क्या कहेंगे, ज्ञान सुगंधा का, यानी सुगंध को उसने जान लिया। आकार यानी शेप के अर्थ में मत लेना। तो ये ज्ञानोपयोग में ही संयम का कार्य, क्यों? ये जो विशुद्धि की बढ़ना होता है, आत्मा का सन्मुख जो उपयोग होता है, और ये सारा ज्ञान में ही चलेगा ना कार्य। शुद्ध ज्ञान जो कुछ, जैसे हमने आत्मा संबंधी बातें जानी, अब ये तो शब्द हुए, उस शब्द का जो विषय है उसको पकड़ेंगे हम, तो उसको भी शुद्ध ज्ञान ही कहेंगे। एक होता है शब्द, वो होता है वाचक, बताने वाला, और एक होता है वाच्य, जिसको बता रहे। जैसे हमने उंगली दिखा दी, वो देखो चंद्रमा, तो किसको देखना? उंगली को, चंद्रमा। जब कहते ये भगवान आत्मा है, ऐसा ऐसा है, तो वो शब्दों को नहीं पकड़ना। शब्द तो सुन रहे भगवान आत्मा, पर किसको, किसका लक्ष्य करना है? जो भगवान हम स्वयं जो है उसको लक्ष्य करना। तो हम कहेंगे इसने वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को जान लिया। शब्द तो वही के वही है, या तो हम शब्दों को जान सकते हैं या तो उसके विषय को जान सकते हैं। ये अपनी अपनी बात है ना, किसको जान रहे। शब्दों को जानेंगे तो कहेंगे ये मति ज्ञान से इंद्रिय का विषय हो रहा है। अब उसी शब्दों ने जिसको बताया, जिस अर्थ को बताया, उसको पकड़ेंगे तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये तो हो गए अपनी साकार उपयोग की बात। तथा तेज, पद्म और शुक्ल, इन तीनों में से कोई एक लेशा होती है, ये शुभ लेशा में से कोई एक लेशा होती है, जो नियम से वर्धमान होती है। वर्धमान यानी भी बढ़ना, यानी एक लेशा में भी असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान होते हैं लेशा में भी, और वो कैसे होते भी पीत, पद्म और शुक्ल जो है उसकी विशुद्धि की ओर, यानी उसके अविभाग प्रतिष्ठित बढ़ने की ओर चले जाएंगे। वेद भी तीनों में से कोई एक होता है, यहाँ वेद से तात्पर्य भाव वेद से है, ये इसलिए स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं समझे कि स्त्रियों को भी संयम प्राप्त होता है। जब स्त्री कहेंगे तो द्रव्य स्त्री की बात है, उसके तो पांच गुणस्थान तक ही गुणस्थान है। काणी व पूर्वबद्धा ने इस पद की विभाषा, पूर्वबद्धा ने जो ऑलरेडी सत्ता में है उसकी क्या क्या पोजीशन है, तो कहते यहाँ पर प्रकृति सत्कर्म, सत्कर्म यानी सत्ता का कर्म, कौन कौन सी प्रकृतियाँ सत्ता में है उसको प्रकृति सत्कर्म कहेंगे। स्थिति सत्कर्म यानी कितनी स्थिति वाले हैं, क्या 70 कोड़ा कोड़ी सहित वो संयम को प्राप्त करेंगे, तो कहते नहीं, वो अंत कोड़ा कोड़ी हो ही जाएगी। हमने संयमा संयम में भी देखा, अधिक स्थिति के साथ नहीं हुआ, अधिक प्रवृत्तकरण के भी एक अंतर्मूर्त पहले ही उसकी अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाएगी, ये बताएंगे यहाँ पर। अनुभाग सत्कर्म, अनुभाग भी किस रूप से है, हमने देखा था शुभ में तो चतुस्थानी होता है और अशुभ में तो पांच गुण स्थान के लिए द्विस्थानी होगा, यहाँ पर भी होगा, श्रेणी में एक स्थानीय होगा यहाँ। हाँ, और प्रदेश सत्कर्म, प्रदेश कितनी है उनकी मार्गणा करनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, जान लेना चाहिए, और उनकी मार्गणा का भंग दर्शन मोह के उपशामक के समान है। मार्गणा का भंग यानी जैसे दर्शन मोह की उपशमना करने वाले के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश की बात की थी, वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक स्वर सम्यक मिथ्यात्व का भी सत्कर्म वाला है ऐसा कहना चाहिए। हमने जो दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियाँ देखी थी, तो यहाँ कहते कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन क्यों डाली नितिन भाई? आप घोटाला कर रहे हैं, मिथ्या तो आने पर तीन पार्ट नहीं होते, जब सम्यक दृष्टि है तभी हुए थे। अब यहाँ वो वेदक सम्यक के साथ सातवां गुणस्थान प्राप्त करने वाला है, इसलिए उसके तीनों की सत्ता आवश्यक है। अब बहुत घोटाला, आप कुछ मत बस खाली सुनो और जितना पूछा है उसका जवाब देने की कोशिश करो। हाँ आपने एडिशनल कुछ नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, वो बात हुई है, देखो दर्शन मोन, अब ये कौन सा जीव लेना है हमको, सातवां गुण स्थान प्राप्त करने वाला, औपशमिक के साथ कर रहा है कि शौपशमिक यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ, वेदक सम्यक्त्व, तो वेदक सम्यक्त्व तो जो प्राप्त करता है मिथ्यात्व में से जो करेगा उसके तो तीनों की सत्ता होगी, तीन यानी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब जो चौथे से भी सातवें में जाएगा उसके भी तीनों की सत्ता होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, वो भी वेदक के साथ जा रहा है। जो क्षायिक वाला जा सकता है कि नहीं सातवें में, जा ही सकता है परंतु उसकी दोनों सत्ता ही नहीं है, तो उसके तो कोई दर्शन होने संबंधी तो कोई चर्चा ना दर्शन होने के ना अनंत अनुबंधी, तो वहाँ तो केवल हम चारित्र होने की चर्चा करेंगे, यहाँ बात किसकी हो रही, वेदक के साथ जाने वाले की है, तो उसके अभी सत्ता में अनंतानुबंधी भी है, दर्शन मुनि के तीनों भी पड़े हैं, तो पूछ रहे अनंतानुबंधी की कितनी है, अनंतानुबंधी की कौन कौन सी है, कौन सी चार, क्रोध मान माया है, ये सब पड़ी है अभी। बोलो ना आप, आपको क्या पता है, मुझे क्या पता है।
देखिए अभी हम वेदक सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं ना, तो वेदक सम्यक्त्व जो मिथ्या दृष्टि है उसके चार अनंतानुबंधी वाले हैं, और दर्शन मोहिनी की कितनी है, तीन, ऐसे सात प्रकृतियों की सत्ता है। अभी उसमें से हम केवल दर्शन मोहिनी की बात करेंगे तो उसका यहाँ जो कह रहे हैं कि वो उसके साथ चढ़ेगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है,
यानी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियाँ उसकी चर्चा चल रही है, उसका क्या प्रोसेस होता है उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे हैं। आगे
अभी ख्याल में आया, तो कितनी सत्ता में प्रकृतियाँ हैं, वेदक मिथ्या दृष्टि जो पहले सम्यक भी था अभी मिथ्यात्व में आया है, उसकी सत्ता में कितनी प्रकृतियाँ हैं, अभी अपन जो बात करें वो सात, नाम बोलो, ठीक ठीक, अभी ख्याल में है ना, अभी जो चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती है ख्याल में, उनके तो अनंतानुबंधी का वहाँ उदय नहीं है और सम्यक प्रकृति का ही उदय है, बाकी दो सत्ता में है, और वो भी सत्ता में है, सत्ता में नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं, उदय में नहीं है। अब इतनी बात ख्याल में आते हैं, आगे की बात आसानी से समझोगे, डर गए ना, नहीं अच्छा,
तो ऐसा कोई जीव होगा, अभी मैं नितिन भाई को नहीं पूछती हूँ कि जिसके वो तीनों के दर्शन होने के तो तीन पड़े हैं, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है और वो संयम प्राप्त कर रहा है, ऐसा कोई जीव होगा, नहीं आप नहीं कह रहे
हैं, नहीं आप मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने,
मैंने मिथ्या दृष्टि कहा है,
अच्छा तो
चौथे पांचवे वाला है, दर्शन मोहनी के तीनों है और अनंतानुबंधी नहीं है, विषय योजना वाला,
सातों की सत्ता नहीं है, वो भी कर सकता है चौथे पांचवे वाला,
वो तो हमने बोला ना शाइक वाला पहले ही बता दीजिए, शाइक वाले तो ये तीन नहीं, अनंतानुबंधी भी नहीं है, शाही की बात नहीं चल रही है, वेदक की ही बात, उसको वेदक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, चलो अभी उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, इतनी बात बताइए, ये वेदक प्राप्त करने वाले के सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है वहाँ पर, आयु की एक या दो प्रकृतियों का सत्व है, एक या एक प्रकृति का सत्व है, कौन सी प्रकृति का सत्व, एक ही प्रकृति का सत्व यानी सत्ता, सत्ता की बात चल रही है, जीव की सत्ता में कौन सी प्रकृति होगी, कहते एक होगी या दो होगी, तो दो होगी तो कौन सी होगी, एक होती होगी, हाँ बोलो मंजू जी, अरे वर्तमान की लेना कि नहीं लेना, वर्तमान जो बांधी होगी तो पर उदय तो चलेगा ना मनुष्यायु का। हाँ बोलो। हाँ एक होगी तो मनुष्यायु है। हाँ देवाय मनुष्यायु और देवाय, क्योंकि मनुष्यायु के बिना तो कहाँ, मनुष्यायु का तो उदय चल रहा है जो ऑलरेडी, जिसका उदय चल रहा है वो तो है ही जीव क्या, वो बनने वाले की बात, उसके उदय उसको नहीं होगा। कौन से तीन नरक? हाँ पर वो देवायु है ना, उसके मनुष्यायु वर्तमान में है जो भोग रहा है, चल रही है, सत्ता की बात चल रही है, उसमें बोलना
नहीं।
आप पूछ रहे आयु की एक सत्ता या दो सत्ता, एक सत्ता जो होती है वो बुद्धिमान आयु की, और बुद्धिमान कौन सा होगा तो मनुष्य ही होगा, और बुद्धिमान यानी अभी उसने
जो बांधी है
आज भोग रहा है और नई बांधी है वो कौन सी होगी तो देवायु। ऐसे यहाँ जो पूछ रहे एक आयु या दो आयु, तो उसका उत्तर होगा बुद्धिमान एक आयु और बुद्धिमान और बुद्धिमान दो आयु। तो अभी
यहाँ कहते देखो आयु की एक या दो प्रकृतियों का सत्व है,
बंधु की अपेक्षा से बात करें तो
एक तो जिसका उदय है, मनुष्य आयु तो सबके होगी कि नहीं होगी, होगी ही, उसके बिना तो संयम की बात कहाँ, मनुष्य गति में ही होती है तो मनुष्य आयु तो है ही हर एक के पास। यहाँ लिखा है उनमें से मनुष्य आयु का, वो श बराबर करना क्या दिख रहे हैं, मनुष्यायु का ध्रुव रूप से सत्व है यानी वो तो होगी ही होगी हर एक संयम के प्राप्त करने वाले को, और देवायु का भी प्रभव संबंधी आयु बंध के कारण किसी में संभव देखा जाता है। किसी में संभव क्यों है, ये जरूरी नहीं है कि जो संयम प्राप्त करता है उसने आयु का बंध किया हो। मान लेते कोई सौ साल के, अभी हम इस अभी वर्तमान की बात करें, कोई 100 साल की आयु बांध के आया और ऐसे जीव ने किसी 8 वर्ष के बाद तो कभी भी मुनि अवस्था धारण कर सकता है, तो अभी तो उसने आयु का बंध किया होगा कि नहीं किया होगा, तो कहते उसके तो त्रिभाग में आयु बनती है, तो 100 साल का त्रिभाग यानी 66 वर्ष बीत जाने के बाद उसके आयु का बंध होगा, उसके पहले उसने अभी आयु का बंध तो किया ही नहीं है, तो उसने आयु बांधी ही नहीं है, तो उसके एक वर्तमान की मनुष्य आयु भी है। ये हो सकता है कि संयम प्राप्त किया, बहुत काल तक संयम ही रहा, फिर वहाँ से गिर कर मिथ्यात्व में गया, बाद में नरकायु भी बांध सकता है, बाद में मनुष्यायु भी बांध सकता है, तिरंचायु भी बांध सकता है, उसके लिए कोई ना नहीं है, पर जिसने ऑलरेडी आयु का बंध किया है प्रभव का, तो देवायु का किया हो तो संयम में प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। जिसने मनुष्यायु या तिरंचायु या नरकायु बांधी है तो संयम की बात क्या, पांचवा गुणस्थान भी उसके नहीं होगा। जैसे हम श्रेणी के राजा की बात करते हैं ना, उसको तो श्रावकोत्तम कहने में आता है, फिर गुणस्थान कौन सा था, श्रेणी का गुणस्थान कौन सा था आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमने अभी आपको रूल बता दिया है, वो एक शायद समय दृष्टि थी, क्योंकि नरकायु बांधी थी, समय तो होने के बाद तो नरकायु नहीं बांधी है, क्योंकि वो बांध ही नहीं सकता है, तो बांधी थी तो कब बांधी थी, तो पहले बांधी थी, तो पहले बांधी थी, अभी उसके पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता, भले क्षायिक हो गया पर पांचवा नहीं होगा।
नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है,
हम आपका आगम चक्षु दे रहे हैं, चक्षु लगाओ सब कुछ जान लो बैठे
हुए। नहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिसका अंतर्भूत बाकी है और संयम को प्राप्त कर रहा है वो खाली एक ही आयु है,
क्या क्या क्या
ऐसे भी हो सकता है,
ये हो सकता है उस बहु में जो जाने वाला है चरण शरीर वो तो आयु बांधेगा ही नहीं है, वो उस बहु में तो आयु ही नहीं बांधेगा, अंतर्भूत की क्या बात है, पूरे करोड़ पूर्व भी बाकी है उसकी अभी भी, वो आयु बांधने वाला ही नहीं,
2/3 1/3 देखा नहीं,
अच्छा 2/3 हो रहे हैं, चरम शरीर यानी अंतिम भव है वो।
हाँ मैंने नहीं चरम शरीर की बात की, क्यों मरण तक उसकी एक भी आयु नहीं होगी और संयम प्राप्त किया,
क्योंकि आयु का बंध करेगा तो चरम शरीर कह ही नहीं सकते, आयु का बंध किया है तो भोगना ही पड़े, अन्य नाम कर्म का कितना भी बंद करे क्या करे उस भव में, क्योंकि सारी प्रकृतियां तो बंधेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, वो तो भोग ही नहीं सकता चरम शरीर, जैसे देवगति बांध रहे हो, तीर्थंकर का जीव माँ के पेट में आया है तभी से लेकर देवगति बांध रहा है, देवगति की बात करें आयु नहीं, कब तक बांधेगा? तो आठवें गुणस्थान तक
बांधेगा।
तो फिर उसका क्या होगा? वो भोगने के लिए देव में जाएगा?
नहीं।
तो पूछते इसका क्या फायदा हुआ? कर्म को भोगने में फायदा है क्या? उसको छुपाने में फायदा है? हमें लगता है इतनी पुण्य प्रकृति इतनी बांध के छोड़ के जा ये अपने अभिप्राय में पड़ा है, हम पुण्य को भोगना चाहते
हैं। कहाँ
भोग रहे? जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। वो पाप से पैसा कमाता है, उसके घर वाले बैठे बैठे उनके पुण्य का उदय है, उनको पाप नहीं करना पड़ता। हमें पता ही नहीं पाप पुण्य का उदय विशेष। अब किसी का पाप का उदय आएगा तो पहले में पहले क्या करें? वो मैं कैसा पुण्य कमाऊं कि ये पाप का उदय मिट जाएगा? ये वो पाप के उदय से भिन्नता की नहीं सोचता, पुण्य करके वो संयोग पलटाने की सोचता है,
बंधक की सोचता
है। ये अभिप्राय में पड़ा है उसकी तरह, बंधे की सोचता है क्योंकि उसको भोग में रुचि है ना। पाप नहीं भोगूंगा, पुण्य भोगना चाहता है, मैं भोग सकता हूँ। ये सारे मिथ्यात्व की मान्यता उसमें गर्भित है। हम भोग सकते हैं क्या नहीं सकते, वो तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। उसमें हमने ये मैं भोगूंगा, ये मुझे इष्ट है, मुझे असली, मुझे ये दूर करना, ये लाना, ये बात सोचता है। विशेषार्थ पहले दर्शन मोक्षामना अनुयोग द्वार में पूर्वबद्ध कितने कर्मों की सत्ता होती है यहाँ बतलाया है, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। यहाँ ना यह चाहिए, पहला यहाँ यह करना। देखो मैं फिर पढ़ती हूँ, पहले दर्शन मोक्षामना अनुयोग द्वार में पूर्वबद्ध कितने कर्मों की सत्ता होती है यह बतलाए हैं। मैंने वहाँ क्या बतलाया तो वो बात है, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना, विशेष जानने डिफरेंस क्या है कि जो वेदक प्रायोगिक मिथ्यादृष्टि जीव संयम के अभिमुख होते, अभिमुख होना यानी सन्मुख होना, अभी प्राप्त करने जा रहे हैं, उनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नियम से होती है तथा उनमें से किन्हीं के आहारक शरीर चतुष्क की भी सत्ता पाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? कौन है ये जीव? मिथ्या दृष्टि है,
आहारक बांधते हैं
और आहारक की सत्ता है,
करके नीचे गिरा है और वापस स्वयं को
वेदक योगी काल चल रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है, उनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होगी कि नहीं होगी?
नहीं,
क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो और मिथ्यात्व में आवे, मैं ये कब हो सकता है? तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता है और जो मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसे कब हो सकता है? तो किस जीव को ये होता है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधते बांधते मिथ्यात्व में गया, ऐसे कौन से जीवों में हो सकता है? सभी जीवों में तो होता नहीं है ना?
नहीं।
हाँ, जिसने नरकायु की आयु बांध के, यानी नरकायु बांध के उसके पश्चात सम्यक को प्राप्त किया है और तीर्थंकर प्रकृति की प्रकृति भी बांध रहा है, ऐसा जीव उसने क्षायिक नहीं किया तो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले ही, और फिर मरकर नरक में जाएगा और वहाँ एक अंतर्मूर्त में ही समय को प्राप्त करेगा, फिर गिरेगा नहीं बिल्कुल। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति बांधना भी चालू हो जाएगा, मिथ्यात्व में तो बांधता नहीं है। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव मिथ्यात्व में तभी आ सकता है जब उसने पहले नहीं समय को होने के पहले नरकायु बांधी हो,
वो भी दूसरे,
अदरवाइज वो नहीं आ सकता,
वो भी दूसरे हो तीसरे तरफ से।
और इसने क्षयिक नहीं प्राप्त किया, तीनों में जा सकता है ना कि नहीं जा सकता? पहले में जाने में क्या हर्ज है?
नहीं, पहले में तो साइट हो ही जाएगा, कि किन्ने और किन्ने से पहले
साइट होगा तो सौक्षम के साथ नहीं हो सकता ना। तीसरे तक
अच्छा नहीं, मैं सोचा कि जो तीर्थंकर की प्रकृति वाला पहले नरक जाएगा वो साइट हो ही जाएगा, इसलिए
पहले नरक में अगर वो सम्यक्त्व के साथ जाता है तो क्षयिक होने की, सम्यक्त्व के साथ जाता है तो क्षयिक की आवश्यकता है।
अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति वाला भी पहले नरक में?
हाँ, ऐसे कोई बाधा नहीं है पहले नरक में जाने की। उसने क्षयिक नहीं किया हो तो क्या होगा?
वो अंतर्मुख के लिए भी क्या होने जाएगा,
तो वहाँ से निकलने के बाद क्षयिक हो जाएगा ना, मनुष्य होकर फिर क्षयिक हो जाएगा। और जिसने पहले तीरियन चाई बांधी है उसके,
वो तो तीर्थंकर तो प्रकृति का बंधन
बांधे गए हैं। और जिसने मनुष्याई बांधी है
वो भी नहीं बांध,
ये तीर्थंकर प्रकृति की बात कर रही है, जिसने पहले मनुष्यायु या तीरियन चाई बांधी है, बाद में समय को प्राप्त किया है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बांधेगा,
बांधेगा ही नहीं,
क्योंकि भोग भूमि के मनुष्य और तीरियन से भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं सत्ता वाला नहीं होती, वो सत्ता वाला नहीं। थोड़े थोड़े नियम आप समझ जाओगे आगे चलकर। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर का जो जीव है ना, या तो नरक से आएगी या देव से यहाँ आएगी। ये भोग भूमि में कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले है ही, वहाँ क्षयिक समय दृष्टि बहुत है, तीरियन से तो असंख्यात है, और मनुष्य क्षयिक समय दृष्टि भोग भूमि में मनुष्य है कि नहीं है? है, कितने हैं संख्या से, क्यों मनुष्य संख्या से होंगे ना? यहाँ किसकी बात है? आहारक की। तो अभी मेरा प्रश्न है, आहारक की पहले उद्वेलना होगी कि समय समय मिथ्या तो की पहले होगी, कंप्लीट किसकी होगी?
आहारक
क्यों उद्वेलना की बात? देखो, आहारक का बंध कौन करता है?
सातवें
और आठवें वाले, ऐसे जीव गिरकर मिथ्यात्व में तो जा सकते हैं, तो बहुत लंबे काल तक मिथ्यात्व में रहेंगे, तो आहारक प्रकृति जो बांधी है उसकी उद्वेलना होती है ना, अन्य प्रकृति रूप होकर नष्ट हो जाती है, सत्ता में पड़े पड़े उसके नष्ट हो जाते हैं, उसको उद्वेलना कहते हैं। और जो जीव मिथ्यात्व में गया है उसके सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की भी मिथ्यात्व में संक्रमण होकर उद्वेलना हो जाती है। तो ये जो उद्वेलना का काल है, कार्य है,
आहारक की पहले होगी,
हाँ, आहारक की पहले हो जाती कंप्लीट, बाद में सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की होती है। तो जो वेदक समय, इसके लिए कहा क्या, किन्हीं के आहारक चतुष्क की भी सत्ता पाई जाती है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।
नमो यंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रानं, नमो लोहे सुब्रतावणं, नमो यंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रानं, नमो लोहे सुब्रतावणं, नमो यंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रानं, नमो लोहे सुब्रतावणं।